ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
சத்கன் சித்கன் ஆனந்தகன் கல்யாண குணகண நிலய அவ்யக்த அவ்நாசி சர்வேஸ்வர் ஜெகத் நியந்தா ஜெகதாதார கருணா வருணாலய் आनंद कंद भगवान सच्चिदानंद की असीम अहेतु की कृपा के साथ कल हम लोग ईशावास्य उपनिषद के 11वें मंत्र पर विचार कर रहे थे, विद्या और अविद्या. इसी क्रम में अगले मंत्र पर, 12वें मंत्र पर, संभूति और असंभूति के द्वारा धीर पुरुषों ने समझाया, अंध तम प्रवशन्ति ये संभूत्या उपासते, ततो भूय इवते तमो यहव संभूत्या रता. जो असंभूति माने अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं, वह घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति माने व्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं, वो और भी अंधकार में प्रवेश करते हैं. ये संभूति असंभूति, संभवन माने जिससे सब उत्पन्न होते हैं, कारण ब्रह्म, और संभूति कार्य ब्रह्म. संभूति व्यष्ट व्यष्टि है और असंभूति यह समष्टि है. संभूति साकार है, असंभूति निराकार है. संभूति निर्गुण है, संभूति सगुण है, और असंभूति निर्गुण है. सर्वगुण साकार, निर्गुण निराकार, व्यष्टि समष्टि, कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म, इन नामों से संभूति और असंभूति की जो उपासना करते हैं, अर्थात उपासना तो किसी न किसी की, जब तक ये शरीर रूपी रथ है, और इस रथ में शरीर रूपी रथ के साथ जब तक इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हो, ज्ञानेंद्रियां हो, मन बुद्धि है, इससे मन बुद्धि अहंकार के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा, और शरीर की कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कुछ न कुछ कर्म तो होगा, कुछ न कुछ उपासना तो होगी, चाहे वो शारीरिक रूप से उपासना हो, चाहे वो भौतिक रूप की उपासना हो, और चाहे वो दैविक रूप की उपासना हो, चाहे व्यष्टि के कार्य हो, चाहे समष्टि के कार्य हो, चाहे साकार के लिए हो, चाहे निराकार के लिए हो, चाहे सर्वगुण के लिए हो, चाहे निर्गुण के लिए हो, कुछ न कुछ तो होगा नारायण, इसमें कोई संदेह नहीं है. इन इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा कुछ न हो, ऐसा नहीं होगा, कुछ तो होगा. परंतु जो कुछ हो रहा है उसको समझ कर लेना. जो लोग व्यष्टि के कार्य में इतने रत रहते हैं कि वो समष्टि की उपेक्षा कर देते हैं, वो लोग तो अंधकार में प्रवेश करते ही हैं. उससे भी अधिक अंधकार में वो प्रवेश करते हैं कि जो लोग समष्टि के साथ व्यष्टि की उपेक्षा कर देते हैं। जो लोग केवल सगुण की उपासना में रहते हैं, निर्गुण को की उपेक्षा करते हैं, वो तो सगुण उपास अंधकार में जाएंगे ही, और जो निर्गुण की उपासना करते हैं वो और भी अंधकार में जाएंगे। जो साकार को पकड़ते हैं, निराकार का तिरस्कार करते हैं, वो भी अंधकार में जाएंगे। जो केवल निराकार को पकड़ के साकार का तिरस्कार करते हैं, वो और भी अंधकार में जाएंगे। अर्थात इन दोनों को, संभूति और असंभूति, कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म, इन दोनों को ठीक से समझ के, दोनों के साथ समन्वय करके जो चलते हैं, जो बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा करना क्यों, बोले ऐसा ही धीर पुरुषों के द्वारा। अगले मंत्र में कहा इति सुश्रुणम धीराणाम, अर्थात जो धीर है, अनादि से जो एक परंपरा से चली आ रही है, कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म, अर्थात जो कार्य रूप माया है और उसका अधिपति जो कारण रूप ब्रह्म है, अर्थात कार्य रूप जो कार्य जगत है जिसे हम कार्य ब्रह्म कहते हैं, देहादि ये सब शरीर और शरीर के साथ जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ रहा है, जहां तक हमारी दृष्टि जा रही, जो कुछ हम देखने में आ रहा है, ये सब का सब क्या है, बोले कार्य रूप है। और ये सब कार्य रूप को देख करके केवल जो दिखता है उसी को हम देखते हैं, केवल जो दिखता है उसी को देखते हैं, केवल जो दिखता है उसी को यदि हम देखते हैं तो इतनी दृष्टि तो मैं कहूंगी कि भगवान ने पशु को भी दे रखी है, पक्षियों को भी देख रहे हैं, देख तो सभी सकते हैं, देखने की ताकत तो उनमें भी है, वो भी देखते हैं, और सुनने की ताकत भी है उनमें भी, कुछ 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 में है कुछ में नहीं है। तो देखने की जहां तक बात है तो देखते तो वो हैं, पर देख करके देखने वाले को जो देखते हैं, देखो एक हमारे महात्मा थे अखंडानंद जी महाराज, बहुत सुंदर, वृंदावन वाले नहीं, दूसरे अखंडानंद जी महाराज थे, चित्रकूट वाले, वो भी अवधूत महात्मा थे, उदासीन महात्मा थे, बहुत अच्छे। तो वेदांत जड़ी चर्चा करते थे तो वो कहते थे देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो, ये देखो, अंगूठा दिखा के कहते थे। तो कभी कभी महात्माओं की कोई चर्चा स्मरण होती है तो बहुत आनंद से वो कहा कर देखो देखो, देखने वाले को देखो, जो तुम देख रहे हो इसे देख करके, जिसने इसकी रचना की है, जिसने इसको बनाया है, देखा और देख करके बनाने वाले को समझा, उसे पहचान के लिए विचार किया। यदि आप विचार छोड़ करके केवल देखने में ही ऐसे मस्त रह जाते हो, मैं शायद ये उदाहरण कई बार पहले भी आपको कह चुकी होंगी कि एक बार एक सज्जन किसी महात्मा से मिलने के लिए गए तो उन्होंने अपने हाथ में एक सुंदर सा फूल का गुलदस्ता तैयार किया और ले जाके महात्मा को जी को दिया। तो महाराज जी ने बड़े प्रेम से तरह तरह के फूल इस मंच पर लगे हुए थे तो वो बड़े ध्यान से उसे देखने लगे, टकटकी लगा के देखने लगे, और जो लेके आया था उसकी तरफ उन्होंने एक बार भी देखा नहीं। वो खड़ा खड़ा सोचा कि अब महाराज मुझे, मेरी ओर देखेंगे, मुझे बैठने के लिए कहेंगे, कुछ मुझसे बोलेंगे कहेंगे, पर महात्मा केवल उसी को निहारते रहे, देखते रहे। थोड़ी देर बाद उसका धैर्य टूटा और उसने कहा महाराज, मन में सोचने लगा शायद मुझे लगता है कि ये गुलदस्ता देकर के लाकर के मेरे से कोई भूल हुई है। तो कहा महाराज मेरे से कोई भूल हो गई क्या? तो ना 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 ना, कोई भूल नहीं। तो बोले महाराज ने कहा नहीं, वो देखते हुए जो कहने लगा तो महाराज जी मेरे से कोई भूल हो गई। बोले नहीं नहीं नहीं, कोई भूल नहीं हुई है। इतने में महात्मा से कहने लगा महाराज जी से। महाराज बोले देखो, अच्छा तुमको भूल लगती है तो ठीक है हम इसको हटा देते हैं। जैसे हटाने के लिए तैयार हो झटपट बोलने लगा, नहीं नहीं महाराज फेंकिए भी मत, इसे फेंकी मत। तो बोले भैया न तो देखने देते हो न छोड़ने देते हो, आखिर चाहते क्या हो? बोले चाहता यही हूं कि आप इसे भी देखें तो मुझे भी देखें, कुछ इसे देखें तो कुछ मुझे देखें। कार्य को पकड़ के कारण की उपेक्षा कर देना और केवल कारण को पकड़ के कार्य की उपेक्षा कर देना, ये बात अच्छी नहीं है दोनों के साथ। क्योंकि व्यष्टि का तिरस्कार भी अच्छा नहीं है, समष्टि के लिए व्यष्टि की का तिरस्कार हो उसकी उपेक्षा हो वो भी अच्छी बात नहीं, और समष्टि को पकड़ के, क्योंकि समष्टि में सब है, भूलोक से लेकर के संपूर्ण विश्व को लेकर, राष्ट्र को लेकर, प्रांत को लेकर और जिले को लेकर, मोहल्ले को लेकर, हमारे घर को लेकर, यहां तक सब व्यष्टि से समष्टि पर्यंत, समष्टि से लेकर के यदि हम विचार करते हैं, एक ऐसी दिव्य सोच जिसमें ये हो कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो, किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट न हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, इस प्रकार की जो हमारी सोच है ये उपनिषद हमें प्रदान करती है, ये हमें ये विद्वान देते हैं कि जिसमें ऐसी दिव्य दृष्टि हो, सबकी सर्वभूते हिते रथा की जो भावना हो, उसी का नाम तो नारायण सनातन धर्म है, उसी को तो सनातन धर्म कहते हैं। ये अद्भुत सोच, ऐसी जो दृष्टि है, सर्वभूत हिते रथा की जो भावना है, सबका हित हो, ये भाव जो हृदय में आता है, व्यष्टि को देख करके समष्टि के हित की भावना को अपने हृदय में बनाए रखना, व्यष्टि को के कार्य करते हुए भी समष्टि के हित की भावना हमारे हृदय में निरंतर बनी रहे, यही हमारे इस मंत्र की विशेषता है कि समष्टि के हित की भावना को छोड़ करके केवल व्यष्टि के हित में आहित साधने में आप लगे रहें, वो बात अच्छी नहीं है। और यदि आप समष्टि के हित के कार्य को करते भावना रखते रखते व्यष्टि की उपेक्षा कर देते हैं, माने देह का तिरस्कार कर देते हैं, अपने लिए समय नहीं निकालते हैं, अपने इस शरीर के लिए, अपने नित्य के कार्य के, अपने आपका खाने का ठिकाना नहीं, आपका सोने का ठिकाना नहीं, आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त होती है, और जिस जीवन में आपके अपने आपके ऊपर यदि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक नियम अपने का पालन नहीं करते हैं, आप अपनी दिनचर्या युक्त आहार विहारश्च जो एक जीवन का नियम है कि नियम के अनुसार हमें ऐसे भोजन करना चाहिए, ऐसे शयन करना चाहिए, ऐसे कार्य करना चाहिए, शरीर की ये नित्य क्रियाएं होनी चाहिए, शरीर का धर्म करने के लिए शरीर के साथ, हम यदि इसको इससे केवल समष्टि की हित में ही लगे रहते हैं, इसकी उपेक्षा कर देते हैं, तो धीरे 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 क्या होगा, जो लाभ हमको इस शरीर से लेना चाहते हैं वो भी हमको नहीं मिल सकेगा। इसलिए हमें व्यष्टि की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, और व्यष्टि की उपेक्षा में न करके व्यष्टि के हित के लिए हम लगे तो व्यष्टि की हित करते करते ऐसा हित न करें कि सुबह से लेके शाम तक किसी शरीर की उपासना में ही लगे रहें, शरीर को ही नहलाने में, शरीर को सजाने में, शरीर को बनाने में, शरीर को आराम देने में, शरीर के रख रखाव में, शरीर में ही हमारा समय समूचा व्यतीत होता जाए, केवल शरीर में ही के कार्य में ही लगे रहें, वो भी बात अच्छी नहीं, और शरीर से थोड़ा ऊपर उठे तो परिवार के लिए लगे रहे, परिवार से थोड़ा ऊपर उठे, अपने परिवार से ऊपर उठे तो अपना कुटुंब जन जो है उनके लिए रहे, उनसे थोड़ा सा ऊपर उठे जाति के जो लोग हैं नातेदार उनके लिए हम लगे, और उससे ऊपर उठे तो थोड़ा समाज के लिए लगे। ऐसा इस प्रकार हम धीरे धीरे अपने आप को सबके हित की भावना करते करते हम समष्टि की ओर बढ़ते चले गए, और इन सब के साथ साथ व्यष्टि को भी और समष्टि को भी जो साथ साथ लेकर के चलते हैं, जो सबके हित के लिए समष्टि के साथ सबके साथ के हित के लिए लगे रहते हैं, विचार करते हैं, वही लोग इस जीवन में उस परम सुख को, उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जिसे प्राप्त करना हम चाहते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मनुष्य जीवन हमें भगवान ने केवल भोग भोगने के लिए नहीं दिया है, भोग भोगने के लिए मनुष्य योनि नहीं है। मनुष्य में कभी हम सुख भोग रहे हों, कभी हम दुख भोग रहे हों, कभी दुख के भोगी बन करके हम दुखी हो गए, कभी सुख के भोगी बन के हम सुख के भोगी बन गए। सुख दुख ये दोनों का भोग के लिए नहीं, जीवन तो वो है जो सुख दुख से परे है, अर्थात जीवन तो वो है जो व्यष्टि और समष्टि से ऊपर उठ के है, अर्थात ये परंपरा है, ये एक परंपरा है जिसके लिए कि हम परंपरागत रूप से उसको यदि विचार करेंगे तो तभी हम उससे अलग अपने आप को कर सकेंगे। इसलिए व्यष्टि और समष्टि दोनों का समन्वय बनाकर, दोनों को साथ लेकर जो लोग चलते हैं वो इससे पार हो जाते हैं। इसीलिए अगले मंत्र पर कहा गया, अन्य देवाहु संभवात दान्याहु संभवात इति सुश्रणाम धीरानाम ये नदिक्षसे। अर्थात जो कार्य ब्रह्म की उपासना के फल जो बताया गया और अव्यक्त उपासना का जो फल बताया गया, ऐसा हमने विद्वानों ने सुना है कि जिनसे हमारे उनके प्रति व्याख्या की, जो हमारे प्रति उन्होंने व्याख्या की, बोले क्या व्याख्या की, व्याख्या यही कि विनाश अर्थात असंभूति के द्वारा देहाशक्ति की आदि की, देह में जो आसक्ति है उसकी भावनाओं का हमारे अंदर त्याग होना चाहिए। देहाशक्ति माने शरीर पर हमारी आसक्ति न हो, उसके लिए जो संभूति है अर्थात उसकी आसक्ति कब जाएगी, जब हम असंभूति की उपासना करेंगे। और असंभूति की उपासना क्या है, बोले जिस पर हम उस विचार करेंगे उस परमात्म तत्व के लिए, मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा हम जब उस सद असत पर विचार करेंगे तो हमारे से आसक्ति छूटेगी, और इस प्रकार आसक्ति छूटने पर हमारे अंतःकरण के अंदर शुद्ध भाव संपन्न हो, सद्भाव हमारे अंदर हृदय में आएगा, तो उससे हमारे अंदर अमृतत्व माने एक मिठास मधुरता की, हमें अमृतत्व की प्राप्ति होगी। उस अमृतत्व की प्राप्ति के लिए, उस मिठास की, उस मधुरता की प्राप्ति के लिए, जिस मधुरता को, जिस मिठास को, जिस आनंद को कहिए हम संसार में प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमें ऐसे नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना ये होगा कि व्यक्ति की देहाशक्ति भी हमारे अंदर न रहे, समस्त देह आदि की आसक्ति छूट जाए। ये तब छूटेगी जब हम व्यष्टि की ही उपासना में लगेंगे इसके प्रति, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण जो पुराणों में हम सुनते हैं, महात्माओं से सुनते हैं, सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? बोले आसक्ति। आसक्ति होती कहाँ है? या तो देहाशक्ति होती, ये गेहाशक्ति होती, या विताक शक्ति होती है। देह गेह आदि में जो हमारी आसक्ति बनी रहती है, जिसको हम छोड़ नहीं पाते हैं, त्याग नहीं पाते हैं, और इसका नाम ही है आसक्ति। माने आसक्ति है, कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, और किसी के पास भी आ सकती है। मैं कहती हूं जो आ सकती है तो वो जा भी सकती है, जा भी सकती है, छूट भी सकती है। माने छूट कब सकती है, आसक्ति कब जाएगी? जब आप व्यष्टि की भाव का त्याग करोगे, समष्टि की ओर बढ़ोगे, तो अपने आप ये चली जाएगी। और आसक्ति समष्टि में मन लगे, समष्टि का विचार हो, बुद्धि से सद असद का विचार हो, सद असद के विचार पूर्वक आप अपनी इस आसक्ति को छोड़ सकते हैं। और जब सद और असत के विचार से आपके अंतःकरण के अंदर शुद्ध भाव उत्पन्न होगा, तो तब उसमें आपको क्या मिलेगी? मधुरता मिलेगी, मिठास, अमृतत्व मिलेगा। माने अमृतत्व क्या है? एक मिठास है, मधुरता है। और जिस मिठास को, जिस रस को, जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान ने ये शरीर दिया हुआ है, ये मनुष्य शरीर हमको मिला है, ये मधुरता उससे नहीं मिलेगी। ये मिठास जिसे हम संसार में, जिस मधुरता को, जिस सुख को, जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम शरीर के द्वारा संसार में कितना ही प्रयास करें, कितनी कोशिश करें, परंतु इसमें हमको क्या मिलेगा? इसीलिए इसका नाम है संसार की भगवान ने तुलना की है। बोले किसके साथ? सागर के साथ। सागर जिसका जल खारा होता है, नमकीन होता है, तो ये संसार कैसा है? बोले सागर जैसा है। सागर जैसा है माने इसमें छार है, खारापन है, इसके अंदर कड़वाहट है। और आप चाहते क्या है? हमें मधुरता मिले, मिठास मिले, जिससे जिस मेरे अंदर उस रस की, उस मधुरता की, उस मिठास की प्राप्ति हो। बोले संसार में ढूंढना चाहते हो, मिलेगा? बोले संसार में कभी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कहाँ जाना होगा? हम इस संसार के को से हटके, जिसकी ये सारी रचना है, जिसने संसार बनाया है, जिसने संपूर्ण ये प्रकृति जिससे जो दिख रही है, इसका जो अधिपति है, इसका जो स्वामी है, मध्येण प्रकृति सुरुस्ते सचराचरम, गीता में भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में, मेरे अधिष्ठान में प्रकृति ये सारी सृष्टि की रचना करती है। और सबकी रचना करने वाली कौन है? बोली प्रकृति है। और ये प्रकृति क्या है? बोली ये प्रकृति माया है। और ये माया कैसी है? अनादि शक्ति। ये माया की जो शक्ति है वो कैसी है? बोली अनादि शक्ति से। अपनी अनादि शक्ति से ये माया संपूर्ण जगत की रचना करती है। और इस किसके अधिष्ठान में करती है? मायापति, इस माया का जो पति है, स्वामी है, इसका अधिष्ठान है, इसका अधिपति है, वो कौन है? बोले ब्रह्म है। वो कौन सा ब्रह्म है? मायापति ब्रह्म को क्या कहा गया? कारण ब्रह्म। वही इस सब का कारण है। तो उस कारण ब्रह्म में जब आपका मन बुद्धि से आप विचार करेंगे, और कारण ब्रह्म का विचार करते हुए सद असद के विचार से जब आप उस कारण ब्रह्म से परे, जो निष्कल है, निर्द्वंद है, निर्विकार है, जिसे शुद्ध ब्रह्म का है, परात्पर ब्रह्म का है, वो परब्रह्म तत्व कहा गया, तत्व ब्रह्म है, उस परब्रह्म परमात्मा जिसमें माया के कारण से भी परे, जो कारण ब्रह्म से भी अलग है, अर्थात जिसे परात्पर ब्रह्म कहते, परमात्मा परब्रह्म आप कहेंगे, उस परब्रह्म में पर जब आपकी दृष्टि, आपका चिंतन उसकी ओर बढ़ेगा। उस कारण कार्य से पार करके आप जब निकलेंगे तब आपको उससे क्या अनुभूति होगी? बोले ऐसी अनुभूति होगी जो रस की है, सुख की है। वो सुख की अनुभूति कैसे होती है? बोले जैसे कोई सुसुप्ति अवस्था में हो, बिल्कुल सुसुप्ति, उसमें कुछ नहीं रहता, कार्य कारण सब विलीन रहते हैं। तो उसका अनुभव क्या रहता है? बोले अनुभव रहता है उसका बड़े सुख का।